अभिमन्यु और ईशिका, आशिका और अभिमान से मिलने के लिए राजवंश मेंशन आए थे। वहां अभिमन्यु और ईशिका ने अपने अपने तरीके से उन दोनों को समझाया था, अगर उन्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना था तो एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना जरूरी था। उनसे मिलने के बाद लौटते वक्त अभिमन्यु ने गाड़ी में मिस्टर आशुतोष सिंघानिया को मैसेज किया। वो उनकी खोई हुई बेटी के बारे में बात करना चाहता था। वहीं जब आशुतोष को देर रात के करीब अभिमन्यु का मैसेज रिसीव हुआ तो मैसेज पढ़कर उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। जब से तृप्ति आशिका को लेकर भागी थी उसके बाद से काजल और आशुतोष के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे थे। कहने को वे दोनों साथ थे लेकिन उनके बीच में एक अनजानी सी दूरी आ गई थी। हमेशा की तरह आशुतोष अपने स्टडी रूम में थे। आशुतोष की आंखों में नमी उतरने लगी थी। उन्होंने तुरंत अभिमन्यु को कॉल किया। मिस्टर राजवंश, उम्मीद है कि ये किसी तरह का मजाक नहीं होगा। मैं तृप्ति से पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। उसने यही कहा है कि आशिका इस दुनिया में नहीं रही है। बार बार मैं अपनी उम्मीद टूटना अफोर्ड नहीं कर सकता, आशुतोष ने भरी आवाज में कहा। हालांकि जिस तरह से अभिमन्यु ने आशिका की शादी में घुसकर बीच में अभिमान और आशिका की शादी करवाई थी, उसके बाद से आशुतोष ने यही सोचा था कि वो अभिमन्यु के साथ किसी तरह की प्रोफेशनल रिश्ते भी नहीं रखने वाले हैं। पर बात आशिका की आई तो उन्होंने तुरंत अभिमन्यु को कॉल कर लिया था। वो खुद को रोक नहीं पाए थे। और आपको लगता है कि मैं ऐसे मामले को लेकर मजाक करूंगा? मैं कल शाम वापस गोवा लौट रहा हूँ, क्यों ना कल मॉर्निंग में मिले और इस बारे में बात करें, अभिमन्यु ने शांत लहजे में पूछा। ठीक है, आशुतोष ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। उनके कॉल कट करते ही अभिमन्यु ने उन्हें मिलने का टाइम और लोकेशन भेज दी थी। वहीं आशुतोष ने अपने कमरे में पड़ी डेस्क के ड्रॉअर को खोला। उसमें एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था जिसमें आशुतोष और आशी की फोटो थी। उन्होंने फोटो फ्रेम को खोला तो अंदर आशिका की तस्वीर निकल आई थी जिसमें वो आशुतोष के साथ थी। आशी को गोद लेने और काजल को उसके सदमे से बाहर निकालने के लिए आशिका के बचपन की सारी तस्वीरों को हटा दिया गया था। वो उस फोटो में बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। आशुतोष की तरह वही ग्रेश ग्रीन आईज और चेहरे पर मासूमियत। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। तुम्हारे बर्थडे के दिन ही तुम हमसे अलग हो गई। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। अगर मुझे तुम्हारी जिंदा रहने की 1% भी उम्मीद मिली तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। उम्मीद है कि मिस्टर राजवंश का शक सही साबित हो। तुम हमसे बूर ही सही लेकिन सही सलामत और जिंदा हो, यही मेरे लिए काफी होगा। और अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। तुम्हारी मम्मा किसी को बताती नहीं है लेकिन वो आज भी तुम्हारा इंतजार करती हैं। देखना, हम दोनों मिलकर उन्हें सरप्राइज देंगे। यज्ञ भी बहुत खुश होगा। मैंने और काजल ने आशी को अपनी बेटी की तरह रखा लेकिन तुम्हारे भाई की नज़रों में आज भी उसकी बहन सिर्फ तुम हो। बहुत जिद्दी और रूढ़ है और किसी से ठीक से बात नहीं करता। फिर भी तुम आओगी तो देखना, तुम्हारे साथ बहुत प्यार से पेश आएगा। बस मुझे डर है कि तुम्हारी और यज्ञ की आदतें एक जैसी हैं, कहीं तुम भी उसकी तरह रूढ़ ना हो। आशुतोष की आवाज़ भारी होने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। न जाने कब तक वो आशिका के बचपन की तस्वीर से बात करते रहे। वैसे भी जब भी उन्हें अकेलापन महसूस होता था तो वे जाकर उसी से बातें करते थे। आशिका उनके पास नहीं थी लेकिन हाँ, आज भी उसकी तस्वीर ही उनकी इकलौती राजदार थी। दूसरी तरफ अभिमन्यु और ईशिका के जाने के बाद आशिका और अभिमान कमरे में अकेले थे। आशिका को भूख लगी थी इसलिए अभिमान ने उसके लिए कमरे में ही खाना मंगा लिया था। डिनर हो जाने के बाद दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। आशिका को वेदांत के दिए हुए कपड़े काफी अजीब लग रहे थे इसलिए उसने अभिमान की शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। कोई उसे इस तरह देखता तो उसे उन कपड़ों में जरूर जज करता लेकिन आशिका को उनमें कंफर्टेबल फील हो रहा था। अभिमान के लिए भी ये नया नहीं था जब वो आशिका को लड़कों के अजीब कपड़ों में देख रहा था। आशिका ने महसूस किया कि अभिमान सोने के बजाय उसकी तरफ देख रहा है। आशिका ने तुरंत उसकी तरफ देखकर हैरानी भरे लहजे में पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं बाकी लोगों की तरह इन कपड़ों के साथ तुम मुझे होमलेस तो नहीं समझ रहे? ऐसा कुछ नहीं है, तुम अच्छे लग रही हो, अभिमान ने जल्दी से सफाई दी। तो फिर मुझे ऐसे देखने का कारण? आशिका ने तुरंत पूछा और वो उठकर बैठ गई थी। अभिमान ने नामे सिर हिला दिया था। वो करवट बदलता इससे पहले आशिका ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा। जो भी है सीधे सीधे बताओ, वैसे भी यहाँ छुपाने और डबल फेस रखने के लिए बाकी लोग मौजूद हैं। मैं तुमसे ऑनेस्टी की उम्मीद करती हूँ, आशिका ने तुरंत कहा। वो फिर से रूट तरीके से चिल्लाकर बात कर रही थी जिस पर अभिमान उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। कुछ ही देर पहले ईशिका ने उसे समझाया था कि वो अभिमान के साथ प्यार से पेश आए। आशिका ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नरम लहजे में पूछा, तुम मुझे ब्लीडिंग आईज से देख रहे थे, कुछ चाहिए तो बोलो, कहीं कुछ काम तो नहीं तुम्हें मुझसे? नहीं नहीं, काम तो कुछ नहीं, बस मैं कल रात के बारे में सोच रहा था। कल की रात अच्छी थी ना? अभिमान ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से जवाब दिया।
वहीं उसके कहने का मतलब आशिका बखूबी समझ रही थी। उसने तकिया उठाया और अभिमान के सीने पर मारते हुए कहा, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, और जो सोच रहे हो वो अपने दिमाग में ही रखो। इनफैक्ट दिमाग में भी मत रखो, दिमाग से भी बाहर निकाल दो। तुमने ही तो पूछा था, इसलिए बता दिया। देखो, तुम मेरी वाइफ हो, तो कल रात तुम्हारी कुछ डिमांड थी, तो आज मेरी कुछ डिमांड नहीं हो सकती क्या? अभिमान बोला, कल रात मैं तुम्हारे क्लोज आई थी क्योंकि तुम्हारे डैड ने कहा था कि मैं सिर्फ उनकी हूँ, और मुझे उनके इस वहम को दूर करना था। देखा इसका कितना फायदा हुआ, वो आज मुझसे बात करने के लिए मेरे पास तक नहीं आए, इसी बहाने उनसे पीछा छूट गया। अब वे मुझे तंग नहीं करेंगे, आशिका ने कल रात की सफाई देते हुए कहा। हाँ, तो ये बोलो ना कि कल तुम्हारे सेल्फिश रीजंस थे और आज मेरे प्यार भरे रीजंस को तुम इग्नोर कर रही हो। थोड़ी देर पहले कोई तुम्हें कुछ सिखा कर गया था, समझा कर गया था, लेकिन तुम्हें अपनी मनमानी करनी होती है। अभी थोड़ी देर पहले कॉल पर अपने फ्रेंड को बोल रही थी कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, अपनी जिद में तुम मेरे क्लोज आ सकती हो, पर मैं ये भी उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम प्यार से कभी मेरे करीब आओगी। अभिमान बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था। उसने अपना चेहरा आशिका से दूसरी तरफ कर लिया और लेट गया था। आशिका ने आंखें घुमाई और मन ही मन कहा, कितना बड़ा ड्रामेबाज है ये, लेकिन जो भी कह रहा है सच कह रहा है। आशिका ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। कल तुमने मेरी हेल्प की थी और मेरी बात मानी थी, तो बस इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। उसकी बात सुनकर अभिमान जल्दी से खड़ा हुआ और पूछा, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम तैयार हो? उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। आशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। अभिमान ने कुछ भी करने से पहले आशिका को एक बार फिर से पूछना चाहा, लेकिन उससे पहले आशिका ने उसे खुद के करीब खींचकर उसके होठों को कैप्चर कर लिया था। रोबोट, मुझे नहीं लगता कि इसके होते हुए मैं इसके साथ अपनी लाइफ के किसी भी इमोशंस को अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा, अभिमान ने मन ही मन कहा। कल रात अभिमान आशिका के क्लोज होने से काफी नर्वस हो रहा था, लेकिन आज एक ही दिन में उनकी नर्वसनेस और बीच की झिझक पूरी तरह खत्म हो गई थी और वे दोनों साथ में एक दूसरे में खोए हुए थे।
पूरे दिन आकाश को आशिका से बात करने या उसे डराने धमकाने का मौका नहीं मिला। रात के वक्त वो आशिका से बात करने ऊपर आया तो उसने कमरे के बाहर आशिका की सिसकियों की आवाज़ सुनी तो उसके हाथों की मुठियाँ कस गईं। मुझे जल्द से जल्द इसे सबक सिखाना होगा, वरना ये लड़की अपनी हदें भूलती जा रही है, आकाश ने दांत पीसते हुए कहा और तुरंत दूसरी तरफ चला गया था। उसने तुरंत तृप्ति को कॉल किया। तृप्ति ने कॉल रिसीव किया और धीमी सकपकाती आवाज में कहा, मैंने प्लान बना लिया है मिस्टर स्काई, इस बार हमारी टीम में और भी लोग मौजूद हैं और प्लान फ्लॉप नहीं होगा, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। पिछले 1.5 महीने से तुम्हें टाइम ही दे रहा हूँ और उसका नतीजा ये है कि वो लड़की आज मेरे ही बेटे के बिस्तर पर है, आकाश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। तृप्ति की नज़रें नीची हो गई थीं और अब उसे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने आकाश को आशिका की फ़ोटो दिखाकर यही कन्विंस किया था कि आशिका हमेशा से अकेली रही थी और आज तक किसी भी लड़के के करीब नहीं गई थी। अब जब आशिका की शादी अभिमान से हो गई थी, ऊपर से आकाश खुद उनके क्लोज होने का कह रहा था, तो एक पल के लिए तृप्ति के दिमाग में यही ख्याल आया कि शायद अब आकाश को आशिका में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और साथ में उसे उनके लोन के पैसे भी देने होंगे। मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए, मैंने कहा ना, कुछ भी करो, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, आकाश ने आगे कहा, जिससे तृप्ति ने कुछ हद तक राहत की सांस ली। हाँ हाँ, मैं कुछ करती हूँ, तृप्ति जल्दी से बोली और फिर उसने कॉल कट कर दिया था। आकाश को ही नहीं, तृप्ति को भी ये सुनकर गुस्सा आ रहा था कि आशिका और अभिमान एक साथ थे। अभिमान से मेरी विहा प्यार करती थी, काजल सिंघानिया ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और उसकी बेटी ने मेरी बेटी से। नहीं, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना ही होगा, तृप्ति बोली। आशिका को अभिमान के साथ और ज्यादा रहने देने का मतलब यही था कि उन दोनों का रिश्ता उतना ही और गहरा होने वाला था। तृप्ति इस मामले में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहती थी। अगली सुबह आशिका को होटल में ही छोड़कर अभिमन्यु आशुतोष सिंघानिया से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचा। वे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। अभिमन्यु उनके सामने जाकर बैठा। आशुतोष के चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वे अभिमन्यु से अब तक नाराज थे। जैसे ही अभिमन्यु बैठा, आशुतोष ने सख्त लहजे में कहा, आपने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया मिस्टर राजवंश, वो भी उस तृप्ति बजाज की बेटी की वजह से। जहाँ तक मुझे पता है, उस औरत की सच्चाई आपसे भी छुपी नहीं है, फिर भी आप अभिमान की शादी उससे कैसे करवा सकते हैं? जिस तरह से आशुतोष आशिका से गुस्सा थे और नफरत भरे लहजे में बात कर रहे थे, ऐसे में अभिमन्यु ने आशिका की सच्चाई और अपने शक को आशुतोष के सामने रखना सही नहीं समझा। मैंने उनकी शादी नहीं करवाई है मिस्टर सिंघानिया, वे दोनों पिछले 5 सालों से शादीशुदा हैं, बस ये समझ लीजिए कि मैंने आपकी बेटी को एक क्राइम करने से बचाया है, अभिमन्यु ने जवाब दिया।
जो भी हो, उन दोनों को मिलाने वाले आप ही हैं। यहाँ बात मेरी बेटी की नहीं होती तो मैं आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आता, आशुतोष ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, तो फिर जिस बारे में मिलने के लिए आए हैं उस पर बात करते हैं। मुझे बात को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है मिस्टर सिंघानिया, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। मुझे आपका ब्लड सैंपल चाहिए क्योंकि मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है, अभिमन्यु ने सपाट लहजे में कहा। इसका मतलब आपको किसी लड़की पर डाउट है कि वो मेरी बेटी हो सकती है? मुझे उसके पास लेकर चलिए मिस्टर राजवंश, आगे की प्रक्रिया मैं खुद कर लूंगा, आशुतोष ने बेचैनी से कहा। अभिमन्यु ने तुरंत मना करते हुए नामे सिर हिला दिया था। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे बस आपका सैंपल चाहिए और अभी सिर्फ शक है। जब तक वो शक यकीन में नहीं बदल जाता तब तक आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, और यकीन मानिए अगर मुझे किसी बात पर डाउट है तो वो सच ही होगा। फिलहाल आप दोनों का मिलना सही नहीं है और उसे भी इस बारे में कोई खबर नहीं है। मैं बस उसे देखना चाहता हूँ। क्या आपने देखा, उसकी आंखें मेरी जैसी हैं, वो अलग दिखती हैं, मासूम सी और बहुत प्यारी है, आशुतोष ने भावुक स्वर में कहा। अभिमन्यु उनके इमोशन समझ सकता था, लेकिन अगर वो आशुतोष को ये बता देता कि वो उनका डीएनए मैच जिस लड़की के साथ करवाना चाहते हैं वो आशिका है, तो आशुतोष कभी इस बात के लिए हाँ नहीं कहने वाले थे। बिना सबूत के अभिमन्यु कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था। अभिमन्यु ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खुद से दूर खड़े पृथ्वी की तरफ इशारा किया। इसी के साथ पृथ्वी एक आदमी को लेकर आया, उन्होंने आशुतोष की सहमति के साथ उनका ब्लड सैंपल लिया और फिर अभिमन्यु को दे दिया था। मुझे रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, दो तीन दिन में आ जाएगी, जल्दी कीजिएगा मिस्टर राजवंश, ये दो तीन दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल से बीतने वाले हैं और प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत कीजिएगा, आशुतोष ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। अभिमन्यु के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता और ना ही अपनी बातों से मायूस करना चाहता हूँ, पर रिपोर्ट नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए अच्छी और बुरी दोनों खबर के लिए तैयार रहिएगा। इतना कहकर अभिमन्यु खड़ा हुआ और दूसरी तरफ पलट गया था। उसने आशुतोष के तो ब्लड सैंपल ले लिए थे, लेकिन आशिका के डीएनए सैंपल लेना उतना ही मुश्किल होने वाला था। आशिका पहले से ही किसी टेस्ट और सच जानने के लिए इनकार कर चुकी थी।